بالظبط. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم امور خانداری میں حسن انتظام، یہ ہمارے حضرت کے جو سیریز آف لیکچرز ہیں ان میں سے انتظام خانہ یعنی ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ کا لیکچر پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے ہم اس کے تقریباً آخر میں پہنچ گئے تھے پچھلی کلاس میں، صفحہ نمبر 201 کے اوپر. تو صفحہ نمبر 201 جو آخری پڑھا تھا، اس میں جو عنوان تھا وہ تھا گھر کی صفائی میں مرد کرو. ٹھیک ہے، تو اس میں حضرت نے کیا لکھا تھا کہ مرد کا جو کام ہوتا ہے گھر کی صفائی میں نا، وہ بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو گھر سے سارا کوڑا کرکٹ خواتین جمع کر کے باہر رکھ دیتی ہیں، تو بس وہاں سے اس کو اٹھا کر کے جو گورنمنٹ کا ٹریش کین ہوتا ہے تو وہاں تک اس کو پہنچا دینا. اور دوسرا کیا رول ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب گھر میں صفائی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ صاحب جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ یہ بیٹھے بیٹھے اپنے پیر اٹھا لیں تاکہ ان کے پیر کے نیچے سے جو ہے وہ صفائی ہو سکے، ویکیوم ہو سکے. ٹھیک ہے، تو مرد آخر میں فرمایا تھا کہ مرد اگر یہ دو کام بھی کر دیں تو بڑی بات ہے. تو اب یہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، ابھی دوبارہ پڑھ لیا ہوگا، لیکن اس میں پھر ہم نے آپ کو کیا نقطہ بتایا تھا، حضرت نے ایسی بات کیوں کری؟ تو یہ تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے کہ ایسی بات کیوں حضرت نے کری، کیونکہ عام طور پہ تو ایسی بات حضرت کرتے نہیں ہیں کہ مردوں کو اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہوں اور اس طرح سے سپورٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور طریقوں سے تو کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا بظاہر جو ہے نا وہ illogical سی بات لگ رہی ہے، politically incorrect بات لگ رہی ہے. تو اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھائی تھی پچھلی کلاس کے اندر؟ جی، یعنی اس سے کیا ٹیک ہوم پوائنٹ خواتین کے لیے ہے؟ جی چلے، ماشاء اللہ، آپ نے سنا، سمجھا، یاد رکھا، نوٹ کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو انہوں نے صحیح جواب دیا ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھیں اور اپنا موڈ خراب نہیں کیا کریں. اس کا مطلب کہ ہی دیٹ وی ڈونٹ کیپ ایکسپیکٹیشنز، یعنی ان سے جو ہے نا وہ گھر کے کام کاج کے اندر توقعات نہ باندھیں. ٹھیک ہے، اور توقعات نہ باندھنے کا بھی کیا مقصد ہے کہ جب انسان کسی سے توقعات باندھ لیتا ہے نا، تو اس کے بعد جب وہ توقع پوری نہیں ہوتی ہے نا، تو پھر اس کا موڈ خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب موڈ خراب ہوتا ہے تو اسی کو پھر غصہ آنے کا سبب کہتے ہیں، یہی غصہ آنے کا سبب بن جاتا ہے. جہاں پہ غصہ نکالنے کی گنجائش ہوتی ہے تو وہاں پر یہ غصہ نکل جاتا ہے، زبان سے نکلتا ہے اور تیوروں سے نکلتا ہے اور دوسرے ایٹیٹیوڈ سے نکلتا ہے، اور جہاں پر غصہ نکالنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، یعنی شوہر صاحب جو ہیں وہ ذرا جابر قسم کے ہوتے ہیں، ذرا سخت قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ مروڑنے والے ہوتے ہیں، چاہے ورچولی مروڑیں یا فزیکلی مروڑیں، تو وہاں پر جو ہے نا یہ غصہ باہر تو نہیں نکلتا لیکن دل کے اندر یہ کینہ بن جاتا ہے، دل کے اندر یہ نفرت کا سبب بن جاتا ہے، اور اس سے پھر جو ہے وہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. ठीक है। तीसरी बात माशाल्लाह ये भी सही लिखी कि उम्मीद ना रखें और अल्लाह का एक्स्ट्रा शुक्र अदा करें कि जब मर्द कुछ हेल्प भी कर दे घर के कामकाज के अंदर, अगर वो हेल्प भी कर दे ना तो अल्लाह का तो आपने वैसे ही शुक्र करना ही है कि अल्लाह ने घर दिया, अल्लाह ने जो है वो घर वाला दिया, अल्लाह ताला ने घर की और सारी चीजें दी, इस पर तो शुक्र करना ही है। लेकिन अगर मर्द ने हेल्प कर दिया तो उसके ऊपर अल्लाह का एक्स्ट्रा शुक्र कर ले। ठीक है, तो ये दो बातें आप लोगों को पिछली क्लास में समझाई थी। तो ये जो है ना, ये औरत जो है वो अपने आप को इस काम के अंदर लगा के रखे, ठीक है, घर के काम के अंदर लगा के रखे। वो मर्द से ना तो वो एक्सपेक्टेशन रखे, एक मिनट है जाए, किसी और ने कुछ और भी लिखा है कि काम करते करते गुस्सा क्यों आता है, आती नहीं है, आता है। काम के बाद अगर मर्द काम खराब कर दे तो बहुत ज्यादा गुस्सा भी आती ही नहीं है, आता है। ठीक है, गुस्सा जो है ना ये अंकल होते हैं, ये आंटी नहीं होते, इस वजह से ये आते हैं। ठीक है, तो गुस्सा क्यों आता है भाई? गुस्सा इसी वजह से आता है ना कि आपने किसी बात की तवक्को रखी हुई होती है, और जाहिर है गुस्सा उसी वक्त ही आता है जब इंसान की तवक्को पूरी नहीं हो रही होती है। ठीक है, किसी इंसान के ऊपर गुस्सा आता है जब वो आपकी तवक्को पूरी नहीं कर रहा होता। ठीक है, किसी सिचुएशन में गुस्सा आता है, ठीक है, सिचुएशन में गुस्सा आता है कि जब आपकी मर्जी के मुताबिक वो मुआमला नहीं हुआ होता। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको कहीं पहुंचना था, ठीक है ना, तो बस स्टैंड के लिए आप जा रही थी, बस के लिए आप जा रही थी बस स्टैंड में। अब बस स्टैंड पे आप पहुंची तो बस निकल गई। ठीक है, तो अब जो है ना आपको किस पे गुस्सा आ रहा है? बस ड्राइवर पे गुस्सा आ रहा है कि बस ड्राइवर ने क्यों बस चलाई, उसको चाहिए था कि मेरे लिए इंतजार करे। नहीं, बस ड्राइवर पे तो आपको गुस्सा नहीं आ रहा ना, क्योंकि आपको पता है कि बस जो है वो तो अपने टाइम पे जाती है। ड्राइवर को तो आपके बारे में पता भी नहीं है कि आप कौन हैं, कहाँ रहती हैं और आप कब मेरी बस के लिए आना चाहती हैं, उसको तो पता ही नहीं था। तो अब आपको किस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है? अब आपको ड्राइवर पे गुस्सा नहीं आ रहा, आपको बस पे गुस्सा नहीं आ रहा, आपको जो है वो या तो अपने ऊपर गुस्सा आएगा कि मैंने देर कर दी, फिर मैंने देर कर दी, ठीक है, या जो है वो किसी ऐसे शख्स पे गुस्सा आएगा कि जिसकी वजह से आप समझती हैं कि आपको देर हो गई, या फिर जो है ना बस ऐसे ही कुछ लोगों को ना अपने ऊपर गुस्सा आता है ना किसी इंसान पे गुस्सा आता है, बस उनको हकीकत ये होता है कि उनको अल्लाह पे गुस्सा आता है। ठीक है, हकीकत क्या होती है कि उनको मुझे गुस्सा है, आ रहा है नहीं आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, इनको म्यूट कर दें, तो उनको अल्लाह पे गुस्सा आ रहा होता है कि अल्लाह ताला ने ऐसा काम क्यों कर दिया। ठीक है, कि बस जो है ना वो मेरे आने से पहले निकल गई, बस को रोक देते, मेरे आने का इंतजार करवा लेते। ठीक है, तो हकीकत ये है कि जब भी हमें किसी पे गुस्सा आता है ना तो दरअसल हमें अल्लाह पर ही गुस्सा आ रहा होता है, हमेशा हमें अल्लाह पर ही गुस्सा आ रहा होता है, चाहे शौहर पे गुस्सा आ रहा हो लेकिन हकीकत में वो अल्लाह पे गुस्सा आ रहा है, चाहे बच्चे पे गुस्सा आ रहा हो लेकिन हकीकत में वो अल्लाह पे गुस्सा आ रहा होता है, चाहे किसी और पे गुस्सा आ रहा हो लेकिन हकीकत में हमें अल्लाह पे गुस्सा आ रहा होता है। ठीक है, इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुस्सा हराम है। गुस्सा क्या है? हराम है। ठीक है, क्योंकि ये कोई मामूली मसला नहीं है, ये अल्लाह पे गुस्सा करना है, अल्लाह से नाराज होना है, अल्लाह के ऊपर तनकीद करना है, तो इसका इलाज कर लें, तौबा कर लें अल्लाह ताला से, माफी मांगने के, अल्लाह अब मैं आप पे गुस्सा नहीं करूंगी, अब तक जितनी दफा मैंने आप पे गुस्सा किया है ना आप रहम फरमा के मुझे माफ कर दें, आपका मेरे ऊपर एहसान है कि अभी तक आपने मुझे अजाब में मुब्तला नहीं किया है। हैं, कितना बड़ा, कितने बड़े हैं हौसले परवरदिगार के कि हम अल्लाह पे गुस्सा करते हैं, दिन रात अल्लाह पे गुस्सा करते हैं, जब बेटे पे गुस्सा कर रहे होते हैं ना तो हम अल्लाह पे गुस्सा कर रहे होते हैं, जब शौहर पे गुस्सा कर रही होती हैं अल्लाह पे गुस्सा कर रही होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बिजली का कोई कड़क मार करके, कोई सैलाब का पानी डाल करके, कोई और इस किस्म का जलजला हमारे जमीन हमारे घर में पैदा करके हमें जहन्नुम में अभी तक नहीं पहुंचाया, अभी तक नहीं पहुंचाया। ठीक है, तो यह है हकीकत, माने या ना माने यही है हकीकत। तो अब औरतें जो है ना वो मर्दों से कुछ ज्यादा ही उनको जो है ना वो मोहब्बत होती है माशाल्लाह, मर्दों से अपने शौहरों से बहुत ज्यादा ही मोहब्बत होती है। तो वो जो है ना बस समझती हैं कि बस हमने मर्दों की दुम में लगे रहना है, ये हमारी कोई बहुत बड़ी मोहब्बत की दलील है। ठीक है, मोहब्बत की बहुत बड़ी दलील यह है कि हमने बस अपने मर्द को जो है ना वो बस लगे रहना, उसके साथ किसी ना किसी बहाने से लगे रहना है। ठीक है, घर का काम नहीं कर रहा उसके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, सफाई नहीं हेल्प नहीं कर रहे उसके पीछे पड़े हुए हैं, या किसी और किसी ना किसी और चीज को बहाना बना करके। अंग्रेजी में इसके लिए एक लफ्ज होता है पेस्टरिंग, क्या कहते हैं उसको, पेस्टरिंग, बीइंग ए पेस्ट, पेस्ट कहते हैं कीड़ा। ठीक है, पेस्ट किसको कहते हैं अंग्रेजी में, कीड़े को कहते हैं, बल्कि कीड़ा भी आम वाला कीड़ा नहीं जो कि अपने काम से काम रखता है, बल्कि वो कीड़ा जो कि किसी चीज में लग करके ना उसको खराब कर देता है, उसको पेस्ट कहते हैं। इसी वजह से जो फसलों को तबाह करने वाले कीड़े होते हैं ना उनको अंग्रेजी के अंदर पेस्ट कहते हैं, फसलों को तबाह करने वाले कीड़ों को पेस्ट कहते हैं, और उनको मारने की दवा को क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड। ठीक है, तो औरतें जो है ना वो ये बहुत बड़ी गलती करती हैं, स्पेशली जब वो बीवियां बन जाती हैं उसके बाद वो ये गलती करती हैं कि वो अपने शौहर के लिए पेस्ट बनना जो है ना वो उसका अपना हक समझना शुरू कर देती है। ठीक है, हर वक्त पीछे पड़ी रहेंगी, हर वक्त पीछे पड़ी रहेंगी। ठीक है, और समझती हैं कि ये उनका बीवी होने की वजह से उनका ये हक है, और ये उससे भी आगे बढ़ करके कि ये उनकी मोहब्बत की दलील है कि मुझे तो अपने शौहर से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि बस मैं हाथ धो के उसके पीछे पड़ी रहूं तो इससे जो है मेरी मोहब्बत का इजहार होगा। ठीक है, तो ऐसी औरत को हम क्या नसीहत करते हैं कि भाई स्टॉप बीइंग अ पेस्ट, क्या स्टॉप बीइंग ए पेस्ट। ठीक है, अपने शौहर के हाथ धो के पीछे पड़ने की बजाय जो है ना तुम दो में से एक रास्ता इख्तियार करो, या तो अपने परवरदिगार के पीछे पड़ो, ठीक है ना, या तो अल्लाह के पीछे पड़ो यानी अल्लाह से जोड़ो। ठीक है, अल्लाह से जोड़ो और जन्नत कमाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया को भी जन्नत बना देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारी आखिरत को भी जन्नत बना देंगे। ठीक है, अल्लाह से जोड़ो, अल्लाह को राजी करो, और अल्लाह के जो अहकामात हैं और जो अल्लाह के बताए हुए अखलाक हैं नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से जो अल्लाह ने बताए, उन अखलाक को सीखो। ठीक है, उन अखलाक को सीखो, अल्लाह के हुक्मों पे अमल करने की कोशिश करो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया को भी जन्नत बना देंगे और तुम्हारी आखिरत को भी जन्नत बना देंगे। और अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो गो टू हेल। तो क्या है फिर इसका जवाब, गो टू हेल यानी दुनिया के पीछे पड़ो। ठीक है, दुनिया के पीछे पड़ो, जाओ मस्त मलंगी में नाच गाना और जो है ना वो शॉपिंग और ये इसके पीछे पड़ो। ठीक है ना, और जहन्नुम कमाओ जा करके अपने लिए। ठीक है, जब तुम ये जिंदगी गुजारोगी तो अल्लाह ताला तुम्हारी इस दुनिया को भी जहन्नुम बना देंगे और तुम्हारी आखिरत को भी जहन्नुम बना देंगे। ठीक है, ये जो शौहर के पीछे पड़ती है ना इसका क्या होता है कि जाहिर है दुनिया भी जहन्नुम बन रही होती है और आखिरत भी जहन्नुम बन रही होती है, लेकिन इसका एक और नुकसान होता है, एक एडिशनल नुकसान। वो एडिशनल नुकसान क्या होता है ये आप बता दें, एडिशनल नुकसान क्या होता है। एक तो है ना कि भाई आप अल्लाह के को राजी करने की मेहनत में लग गई, कामयाबी ही कामयाबी दुनिया की भी आखिरत की भी, या आप दुनिया के पीछे पड़ गई, रंग रलियों में पड़ गई। ठीक है, तो आप जाएंगी जहन्नुम में, दुनिया में भी जहन्नुम ही मिलेगी और आखिरत में भी जहन्नुम मिलेगी। लेकिन जो शौहर के पीछे पड़ती है ना पेस्ट की तरीके से, तो इससे क्या होता है ये आप बताएंगी जी, इससे क्या होता है। बेटियां खराब होती, औलाद को भी यही सिखा रही हैं कि ऐसे करो, हस्बैंड स्टार्ट्स डिसलाइकिंग यू। तो साहिर सी बात है, हस्बैंड स्टार्ट्स डिसलाइकिंग यू। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया बाकी लोगों ने कि इसकी वजह से क्या होता है कि घर का माहौल खराब हो रहा होता है और औलाद खराब हो रही है, बेटे और बेटियां दोनों खराब हो, सिर्फ बेटियां खराब नहीं हो रही होती, बेटे भी खराब हो रहे। ठीक है, तो ये जो असर होता है ना, ये फिर मुतअद्दी असर होता है। मुतअद्दी का मतलब होता है आप किसी और के ऊपर असर डाल रही हैं, आप अपनी नस्ल बिगाड़ रही हैं, आप अपनी नस्ल बिगाड़ रही हैं और आप अल्लाह के दूसरे बंदों को बिगाड़ रही हैं। क्योंकि ये जो औलाद है ना, ये आपकी बंदी नहीं है, ये बेटा आपका बंदा नहीं है, ये बेटी आपकी बंदी नहीं है, ये अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ताला ने ये आपकी को अमानत के तौर पे दिए हैं, आपकी आजमाइश के लिए दिए हैं आपको। ये नेमत है, और नेमत क्या होती है, दुनिया के अंदर जो नेमत होती है ये आजमाइश के लिए दी जाती है। ठीक है, तो आप इस आजमाइश में फेल हो रही हैं, आप अपनी औलाद को खराब कर रही हैं, और औलाद जब खराब होगी तो फिर ये आगे जाके दूसरे लोगों को भी खराब करेगी। जब ये बड़ी होगी ये दूसरों के घरों को बर्बाद करेगी। ठीक है ना, वही करेगी जो कि उसने आपको करते हुए देखा है, और आपके शौहर के साथ जो आपकी लड़ाइयां होती थी उसने वो लड़ाइयां होती हुई देखी हैं। जब ये बड़ी होगी तो इसने भी लड़ाइयां ही करनी है। यानी बेसिकली यू आर क्रिएटिंग मोर पेस्ट, यू आर क्रिएटिंग मोर पेस्ट, मोर कीड़े जो के घुन की तरह से लग के खराब कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ना अंग्रेजी का एक मुहावरा है, उसको याद रखें, गो गेट ए लाइफ। क्या है, गो गेट ए लाइफ, जाओ जाके कोई जिंदगी इख्तियार करो, जिंदगी हासिल करो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है तो कुछ करो जा करके। ये जो फारिग बैठी हुई हो ना, तो इससे अपने आप को निकालो, सीखो, इल्म हासिल करो। ठीक है, हमारी नस्लें की नस्लें जो है ना, वो जहालत के साथ ही पैदा हुई हैं, जहालत के साथ ही उनका बचपन गुजरा है, जहालत के साथ ही उनका लड़कपन गुजरा है, और जहालत ही के साथ वो अपने जिंदगी में दाखिल हुई है। प्रैक्टिकल लाइफ जिसको कहते हैं, जहालत के साथ दाखिल हुई है। हम समझते हैं कि साइंस और केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ और इंग्लिश और उर्दू और पता नहीं अरबी, ये पढ़ा करके जो है वो हमने लोगों को पढ़ा लिखा बना दिया है। नहीं, ये हमारी जहालत ही की वजह से हम ये समझते हैं कि हमने ये चीजें पढ़ा करके जो है ना वो लोगों को, अपनी नस्लों को इल्म दे दिया है, तालीम दे दी है। नहीं, ऐसा नहीं है। जहालत के साथ ही सारे का सारा बचपन गुजरा है, सारा का सारा लड़कपन गुजरा है। ठीक है, और इसके साथ हम बड़े हो गए हैं। ठीक है, तो अब जब तक जिंदगी बाकी है, जब तक जिंदगी बाकी है, तो अब तो इल्म हासिल कर लेना कम से कम कि जिंदगी में करना क्या था। ठीक है, जिंदगी में करना क्या था, क्यों आए थे यहां पर, क्या 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 कर रहे हैं हम यहां पर, किस मकसद से यहां पे मौजूद हैं, राइट? और आगे जाएंगे तो वहां पे क्या होने वाला है हमारे साथ, इसका इल्म हासिल कर ले। ठीक है, तो इस इल्म हासिल करने में वक्त लगता है, इस इल्म हासिल करने में मसरूफ होना पड़ता है। ये है जिंदगी, यही है जिंदगी। ठीक है, और जो इस मकसद में नहीं लगा होता ना, जो इस काम में नहीं लगा होता, वो इसी तरीके से घुन का कीड़ा बन जाता है, घुन का कीड़ा बन जाता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। ठीक है, तो चूंकि ये औरतों की क्लास है, यहाँ पे मर्द नहीं है, अल्लाह करे ना हो तो बेहतर है, हो भी तो क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मर्द ही हूँ। ठीक है, तो मर्द सुन रहे हैं तो मर्द सुन रहे, आप भी घुन का कीड़ा ना बने। ठीक है, आप भी घुन का कीड़ा ना बने। और औरतों की क्लास है तो औरतों को तो डायरेक्ट नसीहत कर रहे हैं, घुन का कीड़ा ना बने। डोंट 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 बी ए पेस्ट, स्टॉप बीइंग ए पेस्ट। ठीक है, गो गेट ए लाइफ, अल्लाह से जुड़ो, नहीं जुड़ना अल्लाह से तो जहन्नुम में जाओ। ठीक है, अल्लाह के दूसरे बंदों को खराब ना करो, अल्लाह के दूसरे बंदों को खराब ना करो। ठीक है, वरना तुम्हारे तुम्हें खाली अपने गुनाहों का अजाब नहीं मिलेगा, तुम्हें उनके भी गुनाहों का अजाब मिलेगा। ठीक है, किसी को एतराज हो तो बता दे भाई। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि औरत मर्द की जाती अशिया का ख्याल रखे। फरमाते हैं कि औरत को चाहिए कि वो मर्द की जो जाती चीजें हैं उनका खुद भी ख्याल रखे। मसलन मर्द की गाड़ी को साफ रखने पर औरत को नजर रखनी चाहिए, जिन घरों में नौकर नहीं होते वहां इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की कभी गाड़ी देखें तो आप हैरान हो जाएंगी कि वो आपकी गाड़ी के आपको गाड़ी के बजाय स्टोरेज ज्यादा नजर आएगी। इंजीनियर्स की गाड़ी में हर जगह कागज बिखरे पड़े होंगे, फाइलें पड़ी होंगी, मिट्टी पड़ी होगी, और वो साहब अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को चलाएंगे। बाकी उनको किसी चीज का ख्याल नहीं होगा। हमने देखा है कि डॉक्टरों का भी यही हाल है और इंजीनियरों का भी यही हाल है। उनकी इन चीजों को साफ रखवाना ये भी औरत की जिम्मेदारी है। अब क्या मतलब इसका कि औरत जो है वो बाहर जाए, सड़क पे गाड़ी खड़ी हुई है तो वहां जाके गाड़ी को साफ करे, गाड़ी को धोए, ठीक है? नहीं, इसका हरगिज हरगिज ये मतलब नहीं है। हरगिज हजरत ये बिल्कुल भी नहीं फरमा रहे। बल्कि जिन घरों के अंदर अंदर जो है वो ड्राइव इन पार्किंग होती है, ठीक है, और वहां पर जो है वो पर्दे का इंतजाम होता है, तो औरत जा सकती है वहां पे गाड़ी में और वहां पे गाड़ी की चीजों को देख सकती है, ठीक है? या अगर गाड़ी आपकी सड़क पे खड़ी होती है तो जब आप जाके गाड़ी में बैठे, जब आपको अपने हस्बैंड के साथ जो है वो कहीं जाना है, तो आप गाड़ी में जब बैठ रही है ना, तो आप उस तरह से ना बैठे जिस तरह से हस्बैंड साहब बैठे हुए हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है गाड़ी के अंदर, क्या जो है वो गंद वाला पड़ी हुई है, बल्कि आप देख लें कि भाई गाड़ी में कोई फालतू चीज पड़ी हुई है तो उसको आप ट्रैश कैन में फेंक दें, ठीक है, या उसको जमा कर लें। गाड़ी के अंदर बाकायदा डस्टबिन तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन गाड़ी के अंदर ट्रैश के लिए एक थैला जरूर रखा जा सकता है, थैली, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है कि गाड़ी के अंदर एक या बल्कि कुछ थैलियां फोल्ड करके ना, गाड़ी के अंदर जो वो पॉकेट्स होती हैं, या तो सामने जो डैशबोर्ड के अंदर जो है वो जगह होती है, या ये कि सीट के पीछे जो एक पॉकेट सी बनी होती है, तो वहां पे कुछ थैलियां रख लें, ठीक है? तो ये थैली जो है वो गाड़ी के अंदर से इस किस्म का जो भी कचरा वचरा है उसको जमा करके डालने के लिए, और जब गाड़ी से बाहर निकले तो फिर उसको डस्टबिन में फेंक दें, ठीक है? ये थैली इंतहाई इंपॉर्टेंट है, खुसूसन जब आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। तो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो फिर रास्ते में जो है वो कुछ पीने के लिए खरीद लेते हैं, कुछ खाने के लिए खरीद लेते हैं, कुछ और उसके अलावा स्नैक्स वगैरह होते हैं, तो अब उनके जो रैपर्स होते हैं, उनके बाकी बचे हुए जो बोतलें होती हैं, ग्लास होते हैं, कुछ भी होता है, चाय ले ली रास्ते में, अब चाय का जो मग है, तो घटिया कौमों की तरह से ये हरकत ना करें कि शीशा खोला और बाहर टॉस कर दिया उसको। ये घटिया कौमों की अलामत होती है, ठीक है ना? इल्म हासिल कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो है वो तरबियती इल्म हासिल कर रही है कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, तो इस इल्म के अंदर ये बात भी गौर से सुने, सीखें और अपने बच्चों को सिखाएं कि गाड़ी का दरवाजा खोल करके बाहर टॉस कर देना, ये इंसानों की इंसानियत की अलामत नहीं होती, ये हैवानियत की अलामत होती है, ठीक है? तो गाड़ी के अंदर जो ट्रैश का थैला है उसके अंदर डालना है, ठीक है? तो इस तरीके से औरत जो है वो गाड़ी की सफाई का ख्याल करेगी, खुद जो है वो बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है ना, उसको जो है वो क्या कहते हैं मैकेनिक के पास जाने की, बल्कि हजरत ने तो एक बयान में इस ये वाला बयान, एक और बयान था वो भी एतिकाफ में सारे मर्दों के सामने बयान किया था कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि बीवी से कहते हैं कि तुम इसको मैकेनिक के पास लेके जाओ। हजरत ने फरमाया था मिंबर पे बैठ करके कि हमारा तो दिल चाहता है कि दो थप्पड़ लगाएं उस मर्द को, हमारा तो दिल चाहता है कि उस मर्द को दो थप्पड़ लगाएं, जो कि बीवी को कहता है कि मैकेनिक के पास लेकर के जाओ मेरी गाड़ी को, ठीक है? तो अब वो नहीं मानेगा बात तो वो सजा पाएगा, लेकिन आप जो बात नहीं मानेंगी तो आप ही सजा पाएंगे, कोई दूसरा नहीं आपकी जगह सजा पाएगा। यही अल्लाह तआला का बनाया हुआ दुनिया में यही निजाम है, ठीक है? तो इस तरह से चीजों का ख्याल रखना कि मर्द गाड़ी तो मर्द का होता है, अब जाहिर है दुनिया जो है वो चूंकि उसको दूसरे डायरेक्शन में चलाने की भरपूर मेहनत हो रही है, तो इस वजह से तो अब जो है गाड़ी की ड्राइविंग सीट के ऊपर औरत को बिठा दिया गया, जहां पे नहीं भी बैठती थी वहां पे भी बिठा दिया गया। अभी पिछले दिनों जो है वो हमारे एक दोस्त बताने लगे कि उनका कोई कॉलीग जो था ना, वो उसने टैक्सी कॉल करी, वो जो ऊबर वगैरह की होती है, तो वो टैक्सी आई तो उसको जो चलाने वाली थी वो एक औरत थी, औरत टैक्सी ड्राइवर, ठीक है? तो वो तो आया हुआ था बाहर के मुल्क से, तो वो तो बड़ा खुश हुआ, ओहो बड़ी तरक्की हो रही है यहाँ पर, ये तो उनका मुआशरा वाकई तरक्की याफ्ता हो गया है कि अब टैक्सी ड्राइवर भी जो है वो औरत होना शुरू हो गई। तो उसने कहा उस औरत से कि कैन आई टेक योर पिक्चर, क्या मैं तुम्हारी तस्वीर खींच सकता हूँ? तो औरत भी बड़े फख्र से कहती है यस श्योर व्हाई नॉट, क्यों नहीं, जरूर खींचो तुम मेरी तस्वीर, ठीक है। वो भी अपने मुल्क की तरफ थी क्योंकि बहुत खुश थी कि औरतों को जो है टैक्सी ड्राइवर बिठा दिया, ठीक है। उसके अलावा ये कि जो दफ्तरों के अंदर वो जो केबलिंग वाला काम होता है ना, तारें बिछाने का, तारों को जो खराब हो गई तार उसको ठीक करने का, उसको केबलिंग का काम कहते हैं। कंप्यूटर की केबल्स होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की केबल्स होती हैं। तो एक भाई ने एक बताया कि उनके दफ्तर के अंदर ये वाला काम अब लड़कियां भी कर रही हैं। पहले तो तसव्वुर नहीं था, पहले तो दूसरे काम नहीं करती थी, अब जो है वो केबलिंग का काम ही लड़कियां कर रही। मैंने कहा हाँ, बस देखते जाए, अब थोड़े दिन की बात है। जिस तरह अमरीका के अंदर जो गार्बेज ट्रक आता था ना, मैंने एक वाकया भी सुनाया था कि एक दफा मैं फजर की नमाज में, बहुत यानी गर्मी के दिन के फजर की नमाज थी जो कि बहुत अंधेरा छाया हुआ था उस वक्त ना पूरा, उस वक्त मैं गाड़ी में बैठ रहा था तो सामने जो है वो एक गार्बेज ट्रक आकर के रुका। अमेरिका की बात है, शिकागो में गार्बेज ट्रक रुका, तो गार्बेज ट्रक के ऊपर जो है ना वो पीछे की तरफ जो है वो दो बंदे खड़े होते हैं। जब वो ट्रक किसी ट्रैश कैन के करीब जाके रुकता है तो वो दो बंदे नीचे उतरते हैं, फिर ट्रक का पीछे का हिस्सा जो है वो खुलता है, दरवाजा उसका खुलता है, और वो जो बड़ा सा गंदा गलीज गार्बेज डंप होता है ना, उसको उठा करके फिर उसके अंदर फिट करते हैं। फिर वो इस तरीके से मशीनरी होती है कि वो उठा करके कचरे को ट्रक के अंदर फेंक देती है। इसके लिए दो बंदे जो है वो पीछे खड़े रहते हैं, वो ट्रक चलता रहता है, ये बंदे खड़े रहते हैं, अपनी चीज को पकड़े रहते हैं, हैंडल वगैरह को, और जहां जहां ट्रक जाता है वहां वहां ये खड़े हुए, यानी गर्मी है तो गर्मी में खड़े हुए जा रहे हैं, सर्दी है तो सर्दी में, और वहां पे सर्दी भी आपको पता है यख, यानी यख बस्ता सर्दी होती, सर्दी होती यानी यख कर देने वाली सर्दी होती, लेकिन गार्बेज वाले ये वाला काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त जब मैं फजर के लिए निकला, मेरे सामने गार्बेज ट्रक जो है वो रुका हुआ था, और उसके अंदर से एक लड़की जो है ना, वो जो दो मर्द होते हैं ना उनमें एक लड़की थी, ठीक है ना, वो लड़की उतरी, अमरीकी लड़की, गोरी अमरीकी लड़की, और उसने जो है वो अपने पार्टनर के साथ मिल करके उस गार्बेज के डंप को उठा करके ट्रक के अंदर फिट किया ताकि ट्रक जो है, अब मैं सोच रहा हूं कि ये ट्रक जो है वो, ये बिल्कुल यानी फजर का वक्त है, ठीक है, तो ये तो कुछ घंटों से ये ट्रक चल रहा होगा ना। अब ये लड़की जो है वो अपने घर से बाहर सारी रात इस तरीके से गार्बेज ट्रक, यानी इतना उसके अंदर बदबू होती है कि ये जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, इन्होंने अपने आप को लपेटा हुआ होता है, अपने नाक को बंद किया हुआ होता है कपड़े से लपेट करके, उस बदबू वाले गलीज माहौल के अंदर ये लड़की जो है वो इस तरह से ट्रक से लटक करके पैसा कमा रही है, ये इसका कैरियर है, ये तरक्की है ना औरत की, ये औरत की इज्जत है जो कि इस मुआशरे के अंदर जो है वो औरत को मिली है, और हम पागलों की तरह भागे चले जा रहे हैं उनके पीछे, बस जो वो कर रहे हैं वही हमने करना है, ठीक है। तो अब जो हमारी औरतें हैं वो आज टैक्सी चला रही हैं, बाइक चला रही हैं, बाइकिया के ऊपर लोगों ने बताया कि कराची से शहर से जब वो वापस आए तो कहने लगे कि हमने इस दफा देखा कि बाइकिया की बाइक जो है वो औरत चला रही है और उसके पीछे जो है वो मर्द बैठा हुआ है। तस्वुर करें, औरत जो है वो बाइक चला रही है और ये औरत उसकी बीवी नहीं है, जो पीछे उसके मर्द बैठा है ना, ये उसकी बीवी नहीं है बल्कि वो कस्टमर है इसका, पीछे मर्द बैठा हुआ है, बल्कि शायद ये मुझे याद पड़ता है दो मर्द बैठे हुए, एक भी नहीं, दो दो मर्द बैठे हुए भी, और ये पैसा कमा रही है, ये इनका रोजी कमाने का तरीका है बाइक चलाने का। तो हम यहां जा रहे हैं बल्कि जा चुके हैं, अब खाली जो है ना वो, यानी हमारे यहाँ वो, हमने एक जब बताया ना ये वाली बात, दिमाग तो ये है ना हमारा, हमने जब बयान के अंदर इस वाले गार्बेज ट्रक का तस्करा किया ना, तो उसके ऊपर जो है वो बाकायदा एतराज आया। हमारे यहाँ भी तो मासियां होती हैं जो सफाई का काम करती हैं, हमारे यहाँ भी तो मासियां होती हैं जो के जो जमींदारने होती हैं, जो मासियां होती हैं, ठीक है। तो भाई अगर हमारे यहाँ मासियां होती हैं, जमींदारनियां होती हैं, तो हम कोई फख्र कर रहे हैं उसके ऊपर क्या, ठीक है, जो घर से बाहर निकल करके रात को अगर ये सफाई का काम करी है तो ये कोई फख्र करने वाली बात है क्या। हम ये को थोड़ी कह रहे हैं कि हम जो है वो फरिश्ते हैं और वो अमेरिका जो है वो शैतान है और हम फरिश्ते जो है वो अब शैतान के पीछे जा रहे हैं, ये तो हम नहीं कह रहे। हमारी जो बुराइयां हैं, हमारी जो गलतियां हैं, कोताहियां हैं, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन हम मजीद जो है बजाय इसके कि उनको बेहतर बनाने की तरफ हमारा सफर होता, हम बद से बदतर की तरफ सफर कर रहे हैं, राइट? तो इस तरह के और भी बहुत सारी चीजें हैं, दुनिया अनलिमिटेड नंबर ऑफ मामलात हैं जिसको कहाँ क्या क्या कवर करें ना। बहरहाल, तो बस मैंने कहा भाई अब अभी तो केबलें बिछा रही है ना दफ्तरों के अंदर, कल को जो है ना ये जो पाकिस्तानी इंडियन और बंगाली सड़क साफ करने वाले लोग होते हैं ना, उनको भी जो है वो फारिग कर दिया जाएगा, और वो काम भी लगता है इनकी औरतें ही कर रही होंगी, सड़क की सफाई का काम भी औरतें ही कर रही होंगी, और बड़ा फखर के साथ कर रही होंगी। हम जो मुल्क की तरक्की में जो है वो अपना हाथ बटा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने निज़ाम तो कुछ और बनाया था, जाहिर है उसको छोड़ेंगे और तोड़ेंगे तो फिर यही होगा फिर हमारे साथ। अच्छा, आगे लिखते हैं कि मर्द के जूतों को साफ रखना, मर्द से मुराद दूसरा मर्द नहीं, ऑफिस का मर्द नहीं, या जो किसी ने तस्वीर भेजी थी कि क्या नाम था उसका, ब्यूटी क्लिनिक या स्किन स्किन क्लिनिक की तस्वीर भेजी थी, जिसमें एक साहब जो है वो बैठे हुए हैं आराम से और उनके हाथ जो है वो दोनों तरफ, वो जो क्या कहते हैं उसको, ग्रूमिंग ग्रूमिंग शॉप होती है ना भाई, देख के बताओ ना, रिसेंटली देखा भी था मैं। हाँ, फूड क्लिनिक, ठीक है, तो वो बैठे हुए हैं और एक खातून उनके मैनिक्योर पेडिक्योर है, बाएं हाथ के ऊपर एक खातून लगी हुई है, और ये तस्वीर जो है ये अमेरिका की नहीं है और गैर मुस्लिम खवातीन नहीं है, ये पाकिस्तान की तस्वीर है, और जितनी खवातीन है वो सब स्कार्फ पहनी हुई है, ठीक है। तो एक खातून ने जो है वो एक हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरे खातून ने दूसरा हाथ पकड़ा हुआ है, तीसरी ने जो है वो एक पैर पकड़ा, यानी चार औरतें लगी हुई हैं उसके साथ उस फुट क्लिनिक के अंदर, चार औरतें उस एक मर्द की जो है ना वो खिदमत कर रही हैं। ये मर्द कौन है? ये चार बीवी हैं उसकी, ये उसका शौहर है इन चारों का? नहीं, ये कस्टमर है, ये सिर्फ कस्टमर है उसका, ठीक है। तो या तो कस्टमर्स की खिदमत कर लें, या अल्लाह ने जिसको आपका शौहर बनाया था, ठीक है, या उसकी खिदमत कर लें। कस्टमर्स तो फिर अनलिमिटेड होते हैं, शौहर तो फिर एक ही होता है ना, औरत को दो शौहरों से तो शादी करने की इजाजत नहीं है, तो एक ही की खिदमत कर सकती है ना ज्यादातर, तो एक ही की खिदमत करें। वहां पे फिर अनलिमिटेड नंबर ऑफ शौहर हैं या वो बने हुए शौहर हैं, मजाजी शौहर, ठीक है, जो कि दफ्तरों में मिलते हैं बेशुमार। तो मर्द के जूतों को साफ रखवाना रखना या रखवाना, ये भी औरत की जिम्मेदारी है। चुनाचे अगर उसने दफ्तर में बंद जूते पहनने हैं, यानी चप्पल या इस किस्म की कोई चीज नहीं पहननी, तो बंद जूते तो फिर उनको पॉलिश करना करनी होती है, तो उनको पॉलिश करवाना, अगर घर के अंदर नौकर है तो नौकर से जो भी है उससे पॉलिश करवाना, बच्चे से पॉलिश करवाना, अब्बू के जूते पॉलिश करें आप, ठीक है, बच्चों को सिखाना होता है ना, अब्बू की खिदमत करनी है, पैर दबाना है, ठीक है, या जो है वो पॉलिश करवाना है, उनको वक्त पर सेट रखना, ये औरत की जिम्मेदारी है। बल्कि जापान में तो ये एक आदत है कि वहां औरत खाविंद को जूते पहनाती भी खुद है और वापसी पे जूते उतारती भी खुद है। ये हजरत जी जो है ना वो उस जमाने के जापान की बात कर रहे हैं, जिस जमाने में वहां पे वो वाला कल्चर होता था, क्या कहते थे उसको, शोगन होता था, शोगन का जमाना जापान में, बहुत यानी ये दूसरी जंग अजीम से पहले का वक्त है। उसके बाद थोड़ा बहुत रहा है ये कल्चर वहां पे, लेकिन अब जो है वो जापान का ये कल्चर तकरीबन ना होने के बराबर है, खत्म हो चुका है। अब जापान जो है वो पूरा का पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये अमेरिका बन चुका है, ठीक है, तो देर इज नो जापानीज सिविलाइजेशन एनीमोर, सवाय इसके कागज के जो है वो थोड़े से उन्होंने अपने घर बना लिए होंगे, या का जापानीज थोड़ी सी जो है वो आर्किटेक्चर वगैरह बस थोड़ा बहुत जो उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ अगर है, वो भी टूरिज्म के लिए ज्यादा से ज्यादा, वरना देर इज नो मोर जापानीज का कल्चर इन। और यही हकीकत चाइना के साथ भी है, ये चाइना, ये जापान, ये सब जो है ना वो इस जमाने में, यानी पिछले 50 60 70 साल से ये सब क्या बन गए हैं, चाइना इज इक्वल टू जापान इज इक्वल टू एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये सिर्फ मगरबी तहजीब की एक्सटेंशन बन गया। अब एक्सटेंशन को क्या कहेंगे, हमें तो हम भी तो हैं उन्हीं की तहजीब का हिस्सा बन चुके हैं ना, हमें भी नहीं पता एक्सटेंशन को उर्दू में, नहीं जहन में आ रहा लफ्ज, यानी अल्फाज भी ऐसे होते हैं। तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन ही है पूरी की पूरी, ठीक है। तो अब जो हम इस मखमसे के अंदर कुछ लोग मुब्तला हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर थी और अब चाइना नई सुपर पावर बन रहा है, राइट, और जापान पहले बन चुका था, ये सब बेवकूफी की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। सुपर पावर जो है वो अमेरिका ही है, ठीक है, दुनिया की सुपर पावर अमेरिका ही है, और अमेरिकन सिविलाइजेशन ही जो है ना वो पूरी दुनिया के ऊपर छाई हुई है, और वो जापान के ऊपर पहले ही छाई हुई थी 1945 में एटम बम वहां पे फेंकने के बाद, और जो है फिर कुछ ही अरसे के अंदर वो चाइना पे भी छा गई, तौसी शुदा, माशाल्लाह जबरदस्त, ये तौसी है, ठीक है, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन की एक एक्सटेंशन है, तौसी है, ये कोई अलग पावर नहीं है, ये चाइना कोई अलग पावर नहीं, ठीक है ना, उनका कोई अपना कल्चर नहीं बाकी रहा है, उनकी मुआशत मईशत जो है जिसको के सोशलिज्म कहा जाता था, वो सोशलिज्म कब की खत्म हो गई है, अब सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म है और कुछ भी नहीं है, ठीक। तो ये हमारी अपनी बेवकूफियों में एक मजीद बेवकूफी की तौसी है, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ आवर बेवकूफी है कि हम समझ रहे हैं कि चाइना एक कोई नई पावर के तौर पर उभर रहा है, कोई नहीं ऐसा, ना इंडिया नई पावर के तौर पे उभर रहा है, ना चाइना नई पावर के तौर पे उभर रहा है। हाँ, उनकी जीडीपी थोड़ी सी बेहतर हो रही होगी, या चाइना की और ज्यादा बेहतर हो गई है, उनके लोगों के पास पैसा और ज्यादा आ गया है, चाइना के अंदर नंबर ऑफ बिलियनियर्स जो है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, अमेरिका से भी सुना है कि अमेरिका से भी ज्यादा बिलियनियर्स जो होते हैं वो चाइना में होते हैं, लेकिन वो वर्ल्ड पावर नहीं बन रही, वो कोई यूनिक जो है वो कोई अछूती किस्म की नई ताकत नहीं बन रही है, वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न सिविलाइजेशन ही। ये ऐसे ही है जैसे कि ईरान के बारे में आपने सुना होगा कि वो सिर्फ यहूदियों की एक एक्सटेंशन है और कुछ भी नहीं है ईरान, ठीक है ना, सारा जो है ना उनका उलमा ने 40 सिमिलैरिटीज लिख ली है, बल्कि 40 जो है वो सेम बातें लिखी जो कि यहूदियों और इन ग्रावाफिस के अंदर, जिस तरह वो एक्सटेंशन है ना अकीदे के लिहाज से, उसी तरह से तहजीब के लिहाज से चाइना सिर्फ अमेरिका की एक्सटेंशन है और बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी अपने तौर पे वो अपने मुल्क में मेड इन चाइना हर हर चीज को बनाते रहे और जो है वो मिसाइल बनाए, लेकिन मिसाइल भी अमरीकी मिसाइल की कॉपी होगी, तैयारा बनाएंगे तैयारा भी अमरीकी तैयारे की कॉपी होगी, बम बनाएंगे बम भी अमरीकी बम का ही कॉपी होगा, ठीक है ना, कोई अपना नया बम नहीं होगा क्योंकि उनका अपना कुछ है ही नहीं, राइट, अपना कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम तो चूंकि दुनिया में वो है ना नमरूद, नमरूद का वाक्य है ना, तो नमरूद के वाकये में यही था कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है वो नमरूद को चुप कराने के लिए या नमरूदियों को चुप कराने के लिए कहा ना कि ये उभरती हुई है, ये चांद जो है, ये जो है वो है, तो ये मेरा रब है, फिर चांद जो है वो गुरूब हो गया, तो फिर जो है वो सूरज जो है वो उभरा, वो ये मेरा रब है, ठीक है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरअसल उन लोगों को बता रहे थे कि भाई ये उभरने वाली चीज जो होती है ना ये रब नहीं हो जाती, ठीक है, लेकिन हमारा वही हाल है नमरूदियों जैसा हाल, कि जो उभरता हुआ में नजर आता है ना बजाहिर, हम उसको जो है वो अपना हम वो बना लेते हैं, हाँ अब ये हमारी मदद करेगा, फिर उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर किसी और, ये अब हमारी रब मदद करेगा, अब ये हमारी मदद करेगा, अब ये हमारी मदद करेगा, ठीक है ना। तो बस जो अल्लाह को छोड़ता है उसका यही हाल होता है, जो अल्लाह को छोड़ देता है उसका यही हाल होता है, ठीक है ना, कभी वो चांद को अपना रब बना रहा होता है, कभी वो सूरज को अपना रब बना रहा होता है, लेकिन जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि नहीं, ना चांद रब है, ना सूरज रब है, ना सितारे रब हैं, बल्कि रब तो इन सब का बनाने वाला है, ठीक है, तो ना अमेरिका रब है, ना बरतानिया रब था, ना चाइना रब है, ना जापान रब है, रब तो सिर्फ वो है जिसने जापान को भी बनाया था, जिसने अमेरिका को भी बनाया है, जिसने जो है वो चाइना को भी बनाया है, जिसने बर्तानिया को भी बनाया है, ठीक है ना, रब तो सिर्फ एक ही है, उसी से तुम्हें मिलेगी जो मिलेगी, जो मिल रहा है वो भी उसी से मिल रहा है, जो मिलेगा वो भी उसी से मिलेगा, ठीक है। तो औरतों के लिए इसके अंदर क्या, वही जो कि हर इंसान के लिए कि भाई अल्लाह को अपना बना लो, बाकी सबसे हटकट के, तो जो अल्लाह का निज़ाम बनाया हुआ है ना उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह ताला की मदद आएगी, वरना कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। तो अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम ये है जो कि हजरत यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई ये भी औरत की जिम्मेदारी है, ये भी औरत की जिम्मेदारी है, ये भी औरत की जिम्मेदारी है। तो जापान का वाकया ऐसी बता दिया कि हाँ भाई वो जूते उतारती भी खुद ही है। घर के बाकी कामों में वो नौकर की मदद ले लेगी, लेकिन जितनी भी मसरूफ हो उसको वो अपने लिए रिस्पेक्ट समझती है कि मैं बीवी हूं और ये मेरा फर्ज है। इसलिए जब खाविंद जाने लगता है तो उसके पाँव में वो जूता भी खुद ही पहनाती है, और जब खाविंद घर आता है तो उसके पाँव से जूता भी खुद ही निकालती है। ठीक है, उसको उसके जो पुरानी उनकी तहजीब थी उसने उसको समझा दिया कि भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो वो उसको जिम्मेदारी समझ के और अपने लिए जो है फखर समझ के करती है। हमें तो किसी तहजीब ने नहीं समझाया, हमें तो अल्लाह के रसूल ने ये बात बताई ना, और अल्लाह के रसूल से जिन लोगों ने इस दीन को समझा उन्होंने हमें ये बात बताई। तो हमें तो जापानी औरत से भी ज्यादा इस चीज को अपने लिए फखर का और अपने लिए जो है वो कामयाबी का जरिया समझना चाहिए ना। उस सोसाइटी में इसको एक इज्जत की चीज समझा जाता है या था, तो बहरहाल उसके जूतों को साफ रखने पर औरत की नजर होनी चाहिए। एक मजमून भी आया हुआ है जापान के बारे में जिसको कि मैंने खुद तहकीक के लिए अपने साथियों को भेजा, तहकीक तो उन्होंने कर दिया लेकिन उसको मैं खुद जो है वो भी अभी तक वेरीफाई नहीं कर सका हूं, लेकिन वो आपके साथ मुझे शेयर करना है कि जापान की इस वक्त क्या हालत है। उस मजमून का क्या क्या मौजू है कि जापान की क्या हालत है कि वहां पर यानी सालाना एतबार से कई हजार नहीं बल्कि शायद लाखों में नंबर था या हजारों में नंबर था कि मर्द और औरतें बूढ़े होकर के मर जाते हैं और उनकी जो लाश होती है ना वो किसी की महीनों बाद मिल रही होती है, किसी की सालों बाद मिल रही होती है, क्योंकि उनके साथ किसी का कोई ताल्लुक नहीं था, उनकी औलादें या तो थी ही नहीं क्योंकि औलाद का सिलसिला ही खत्म कर दिया। मुल्क की तरक्की में इतना मेहनत करनी है, जापान को जापान बनाना, राइट, तो अब उसके लिए काम करना पड़ता है ना, जिस तरह का वो आप जापान बनाना चाहते थे तो उसके लिए तो काम करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर शादी तो रुकावट होती है, औलाद तो रुकावट होती है, तो अब जो है ना वो उनका कोई ख्याल करने वाला नहीं, या जिनकी औलाद है भी तो अब औलाद के पास वक्त नहीं, औलाद के पास कोई ताल्लुक ही नहीं माँ बाप के साथ, तो वो कोई पलट के नहीं पूछता। तो बाकायदा गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स हैं कि इतनी बड़ी तादाद में बूढ़े लोग अकेले रह रहे हैं और वो मर जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। ठीक है, सड़ गल करके, जब शायद ताफुन उठता होगा, या ताफुन भी घर ऐसे होते हैं कि बदबू भी बाहर नहीं जाती, तो इस वजह से लोगों को महीनों तक पता नहीं चलता कि अंदर जो है वो मरा पड़ा हुआ है, कोई बूढ़ा है बूढ़ी। तो ये है जापान की इस वक्त की सूरत हाल। तो ये जो औरत शौहर की खिदमत वाली जो है ना, ये तो भूली बसरी किस्म की चीजें होंगी, खत्म हो गई सारी की चीजें, अगर ये होती तो फिर बूढ़े इस तरह से थोड़ी मर रहे होते हैं। तो बहरहाल उसके जूतों को साफ रखने पर औरत की नजर होनी चाहिए, क्योंकि अगर औरत ख्याल नहीं करेगी तो मर्द के जूते इतने गंदे होंगे। अब आपको थोड़ा सा मक्खन लगा रहे हैं, ठीक है ना, बटरिंग हो रही है थोड़ी सी, लेकिन हकीकी बटरिंग हो रही है, झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, कि औरत ख्याल नहीं करेगी ना तो मर्द के जूते इतने गंदे होंगे कि देखने के भी काबिल नहीं। अगर आप देखें कि उसके जूते बहुत पुराने हो गए हैं तो उसके उसको जूते गिफ्ट कर दें, ठीक है, गिफ्ट कर दें, यानी हजरत अज्यूमिंग कि आपके पास पैसे होंगे तो आप उनको गिफ्ट कर दें, ठीक है, या तो आपको माशाल्लाह विरासत में अब्बा से पैसे मिले थे, या जो है आप वैसे ही जो है वो कोई अमीर कबीर हैं, कभी आपने कुछ कमाए थे वो आपके पास सेव हुए रखे हुए हैं, या आपको शौहर जो है वो पॉकेट मनी देते हैं, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जूते उनको गिफ्ट कर दें। आगे भी दूसरा ऑल्टरनेटिव भी हम बताएंगे इंशाल्लाह। मर्द को कपड़े गिफ्ट करना या जूते गिफ्ट करना, उस पर औरत को नजर रखनी चाहिए, यानी जब उसको जरूरत है तब तो उसको कपड़े गिफ्ट करना या जूते गिफ्ट करना। इसका ऑल्टरनेट क्या है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है या ये कि आप नहीं खर्च करना चाहती, गिफ्ट विफ्ट करने का चक्कर नहीं है, तो आप कम से कम इतना तो कर सकती हैं ना कि उनको बता दें कि अब यू नीड ए न्यू पेयर ऑफ शूज, ठीक है ना, आपको अब जो है वो नए जूतों की जरूरत है, आपको जो है वो अब नए कपड़ों की जरूरत है। तो अब जिस तरीके से आप अपनी ज्वेलरी खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या किसी और दर्जी के पास जाने के लिए उनको लेके जाती है ना साथ साथ, ठीक है, और अच्छे मर्द जो होते हैं वो साथ लेकर के जाते हैं, ड्राइवर के हवाले नहीं कर देते खाली जो है, या किसी और के हवाले नहीं करते, टैक्सी में जाओ, खुद ही जाओ, बस में जाओ, जैसे भी जाओ, रिक्शे में जाओ, खुद लेकर के जाते हैं। तो जिस तरह से उनको जो है वो अपने लिए खुद लेकर के जाते हैं ना, उसी तरह से उनके जूते, उनके कपड़े, उनके जो है वो जरूरत की चीज, उसके लिए भी आप ही लेकर के जाए, ये फरमा रहे हैं हजरत यहाँ पर। ठीक है, गिफ्ट करने का मतलब खाली ये नहीं होता कि आप जाके खरीद करके उनके लिए ला करके दें, बल्कि ये भी गिफ्ट की एक शक्ल ही हो जाती है कि आप उनका ख्याल रखें, उनको साथ लेकर के जाएं। या ऑनलाइन ऑर्डर करने का अगर सिलसिला हो सके तो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उनके लिए। वरना ये ऐसे अल्लाह अल्लाह लोग होते हैं, यानी अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं ये, कि जैसे कपड़े हों बस उन्हीं में चलते रहते हैं। अल्लाह ताला ने उनका डिजाइन ही ऐसा बनाया, ठीक है ना, इसको आप डिजाइन कहें या इसको आप वायरिंग कहें, कि मर्दों की वायरिंग अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाई है, औरतों की वायरिंग अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाई है, यानी उनका डिजाइन डिफरेंट है, उनका सोच का अंदाज डिफरेंट है, दोनों का जो है वो प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं, दोनों की वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होती है, अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया है। और ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया है। तो ना जो है वो औरत मर्द की तरह बनने की कोशिश करे, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है, और ना मर्द जो है वो औरत की तरह बनने की कोशिश करे, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। बल्कि ना सिर्फ ये कि मुमकिन नहीं है, बल्कि जो ऐसी कोशिश करता है अल्लाह ताला उसमें नाराज होते हैं, राइट, अल्लाह ताला उसमें नाराज होते हैं कि जो मर्द औरत जैसा बनने की कोशिश करता है और औरत मर्द जैसा बनने की कोशिश करती है। अब आप सोच लें कि पूरी दुनिया के निजाम शयातीन ने क्या बनाया हुआ है कि औरतों को जो है वो मर्द जैसा बनाने की कोशिश, और इसके अंदर बड़ी कामयाबी है इनको, और बहुत से मर्दों को भी औरत जैसा बनाने की कोशिश, ठीक है ना। तो औरतों जैसी हरकतें करते हैं, औरतों की तरीके के जो है वो बाल बनाते हैं, औरतों की तरह की जो है वो बातें करते हैं, ठीक है ना, तो वो मर्द जो होते हैं वो औरत बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब सोचें अल्लाह की कितनी नाराजगी हो, अल्लाह ताला का कितना कहर आएगा इसके ऊपर, कि जहां पे तकरीबन यानी 50% से ज्यादा औरतें जो है वो मर्द बनने की कोशिश कर रही हैं, और 50% अगर नहीं भी तो 20-30% मर्द जो है वो औरत बनने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कितना अजाब आएगा ऐसे मौसम, ऐसे दुनिया के ऊपर ना, वही तो हम दुनिया में देख रहे हैं कैसे कैसे अजाब आ रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि देखें, एक ट्रक को आप कितना खूबसूरत बना सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना खूबसूरत बना लेंगे एक ट्रक को। औरत की मिसाल ऐसी है जैसे लैंड क्रूजर गाड़ी होती है, लैंड क्रूजर मतलब कोई अच्छी सी जबरदस्त किस्म की एसयूवी होगी या सेडान होगी, ये औरत की मिसाल है, खूबसूरत, साफ, सोफिस्टिकेटेड, रंग बिरंगी। और मर्द बेचारा ट्रक और ट्रॉलर की मानिंद होता है, बस उसका काम लोड लेकर निकलना होता है, ठीक है। अब हमारे पठान भाई जो है उनके ट्रकों को आपने देखा होगा, वो उसके ऊपर बड़े जो है ना वो नक्काशी करते हैं, और देर से जो है वो पाकिस्तान के झंडा बनाएंगे और दूसरा कोई झंडा बनाएंगे, और उसके ऊपर कलरिंग करेंगे, एक से एक स्टिकर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सब करने से जो है ना वो खूबसूरत नहीं हो जाता है ट्रक, ट्रक की जो रफ एंड टफ नेचर होती है ना वो अपनी जगह पे बरकरार रहती है। ऊपर से ये पैच वर्क करने से वो ट्रक जो है ना वो हकीकी मानों में खूबसूरत नहीं बन जाता, वो शायद ट्रक के ड्राइवर भी को खूबसूरत लगता होगा, और तो किसी को खूबसूरत नहीं लगता। जिस तरह से बैल को जो है ना वो आप उठा करके ऊपर से अगर एक से एक जो है वो लोग पहना देते हैं बैलों को, ठीक है, तो वो मालिक साहब खुद ही खुश हो रहे होते हैं बस उसके ऊपर ये सारे हार वार डाल करके, वरना तो बैल ही रहेगा ना भाई। उसी तरह ट्रक का भी मामला यही है और मर्द का भी मामला है, मर्द को लोड उठाना होता है, उसको ब्यूटिफिकेशन और सोफिस्टिकेशन इन चीजों से बाय नेचर गर्ज नहीं होती। हाँ एक्सेप्शन जो ऑलवेज देयर, कुछ लोग जो होते हैं वो एग्जेप्ट होते हैं, एक यानी एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन रूल ये बिल्कुल भी नहीं है। ये जो घर का काम है, औरत को चाहिए कि वो उसको रोजाना अपनी जिम्मेदारी समझ कर करे, जैसे नमाज इबादत है ऐसे ही घर के काम औरत के लिए इबादत है, ठीक है ना। यानी नमाज कितनी बड़ी इबादत है, कैसी कामिल इबादत है, ठीक है, तो उससे कौन कर रहा है, मेरे जैसा कोई जाहिर नहीं कर रहा ये वाली बात, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह महबूबुल उलमा वसुलहा, ठीक है ना, हजरत पीर मौलाना जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी, जिनसे जो है वो दारुलूम देवबंद के बड़े बड़े उलमा और मशायख जो है वो उनसे बैठते हैं और उनसे जो है वो अपनी इसलाह करवाते हैं, वो शख्स ये बात करता है, तो इस बात में कोई वजन है कि नहीं है, ठीक है, कि जैसी नमाज इबादत है तो औरत के घर के काम भी उसके लिए ऐसे ही इबादत है। मगर अजीब बात है, ये अजीब बात के तो इससे तो दूसरा टॉपिक अभी शुरू हो जाएगा, तो उस तक तो हम बाद में आएंगे, हो सकता है आज की क्लास में, बल्कि आज की क्लास का टाइम खत्म हो गया, तो इस वजह से हम यहाँ से आगे नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ये एक दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी है, वो अगली क्लास में करेंगे डिस्कस। लेकिन इस वक्त खाली इतनी बात करके या जिस खत्म करेगा कि ये जो औरत का काम है कि घर की खिदमत करना, घर को जो है वो संवारना, घर को जो है वो बनाना, अब ये तो अल्लाह ताला ने उसके जिम्मे ये काम लगाया है, और जिसके अंदर उसका फायदा है, जिसके अंदर उसकी जिंदगी की यानी खूबसूरती है, कामयाबी है, सुकून है, इत्मीनान है, इस काम की तालीम किधर है, इस काम का इल्म किधर है, इस काम के लिए तरबियत इसको कैसे मिलती है, ये काम कर रही है लेकिन काम का तरीका नहीं सीख रही, या कोई उसको सिखा ही नहीं रहा, राइट? काम तो कर रही है लेकिन काम का तरीका इसको कोई सिखाने वाला नहीं, या कोई निजाम नहीं, ठीक है, नज्म व जब्त की बात नहीं हो रही है यहां पर, ठीक है, यहां पर घर को संभालना, घर को बनाना, घर को चलाना, और फिर घर के अंदर जो अल्लाह ताला इसको औलाद देंगे, उस औलाद को जो है वो कैसे लेके चलना, ठीक है, कैसे उसकी जो है वो तालीम का इंतजाम करना है, कैसे उसकी तरबियत का इंतजाम करना है, ये औरत को कौन सिखा रहा है, कैसे सिखा रहा है, कहाँ सिखा रहा है, ठीक है, बल्कि क्या हो रहा है कि इसको जो है वो उसी तालीमी निजाम के अंदर डाल दिया जाता है जिस तालीमी निजाम के अंदर उसको सिर्फ वो चीजें सिखाई जा रही होती हैं जिसके जरिए से कमाई करनी होती है, जिसके जरिए से क्या करना होता है, पैसे कमाने होते हैं, राइट, या बाहर के नज्म व नस्क को जो है वो संभालना होता है, घर के बाहर के नज्म व नस्क को संभालना होता है, वो वाली तालीम जो है वो सारी की सारी औरत को दी जा रही है, ठीक है, और औरत बड़ी खुश है कि हाँ भाई मैं तो तालीम याफ्ता हो रही हूँ, और मैं तो जो है वो इल्म हासिल कर रही हूँ, और मैं जो हूँ वो तरक्की कर रही हूँ, और मैं पता नहीं क्या बन रही हूँ, लेकिन जो काम अल्लाह ने उसके जिम्मे लगाया था उसके लिए तालीम नहीं, उसके लिए तरबियत नहीं, वो जो पुराने जमाने के तरबियत और तालीम थी वो तो खत्म हो गई ना, वो तो फेज आउट हो गई ना, तो अब तो औरत को उसी स्कूल सिस्टम में डाल देते हैं जिस स्कूल सिस्टम के अंदर लड़के पढ़े होते हैं, ठीक है ना, खाली को एजुकेशन अगर आप खत्म भी कर देंगे तो भाई जो लड़कियों का कॉलेज है या लड़कियों का जो स्कूल है और लड़कों का जो स्कूल है वहां पे पढ़ाया क्या जा रहा है, तकरीबन बिल्कुल सेम चीजें पढ़ाई जा रही होती है, वही किताबें लड़की को भी पढ़ा रहे हैं, वही किताबें जो है लड़के को भी पढ़ा रहे हैं, भाई लड़की को दूसरे इल्म की जरूरत है जिस इल्म से जो है वो उसने घर संभालना है और अपने बच्चों को देखना है, अगली नस्ल को जो है वो तैयार करना है, और मर्द को दूसरे इल्म की जरूरत है जिसके जरिए से उसने जो है वो दुनिया का निजाम चलाना है, अल्लाह के खिलाफत में रहते हुए दुनिया का निजाम चलाना है, और उसने जो है वो कमा करके घर में लेकर के आना है, लेकिन दोनों को एक ही तालीम दी जा रही है, तो ये कैसे होगा ना, ये काम ये तो जानवरों वाला तरीका है ना, जानवरों वाला तरीका, देखिए जानवरों को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा ना, अल्लाह ताला ने ही बनाया ना जानवरों को, लेकिन क्या कोई जानवर बाकायदा अपना घर बना करके रहता है, हाँ चूटी रहती है, ठीक है, ओके, हाँ, अपने अपने आप को चूटी से कंपेयर करेंगे, फिर बाकी जो हमारे साइज के जानवर होते हैं जैसे घोड़ा, वो खैर हमारे साइज से थोड़ा बड़ा होता है, शेर, चीता, हाथी, बंदर, राइट, हमसे सबसे ज्यादा करीब जो है वो बंदर होता है, चिंपैंजी होता है, ठीक है, तो उसका कोई घर होता है क्या, चिंपैंजी का कोई घर नहीं होता, बंदर का कोई घर नहीं होता, ठीक है, और उसी तरह से तरीके से इस तरह के जो दो पाए होते हैं या चौपाए होते हैं, कैंगरू होता है, दो पैरों पे चलता है, उसका कोई घर नहीं होता, तो जब घर ही नहीं होता तो उसको घर के नज्म व नस्क को सीखने की क्या जरूरत है, वो तो जंगल में रहता है, खुले आसमान के तहत रहता है, या ज्यादा से ज्यादा कोई तो सिम का शेड होता है उसके नीचे जाकर के शायद सो जाता हो, तो उसको तो घर की उमूर खानदारी की सीखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उसने तो उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करना है, ठीक है, क्या एक इंसान की जो बच्ची होती है क्या हम उसी उसको इसी तरीके से नहीं लेके चल रहे होते कि उसको उमूर खानदारी के तौर तरीके जो है वो नहीं सिखा रहे हो, ठीक है? वो बगैर सीखे हुए फिर अपने घर को टेक ओवर करती है किसी और औरत से और उसको जो है वो चलाना शुरू कर देती है बगैर सीखे हुए कि करना क्या है इस घर के अंदर, चलाना कैसे है इस घर को। उसी तरीके से दूसरी चीज क्या होती है, जानवर की औलाद, राइट? जब जानवर की औलाद इस दुनिया में आती है तो क्या उसको माँ जो है वो सारी चीजें सिखाती है? नहीं, 2-3 दिन की बात होती है जिसमें जो है वो माँ उसको जो है वो थोड़ा सा पैरों पे खड़ा कर रही होती है, और उसके बाद जो है ना उसके अंदर सारी की सारी फितरत जो अल्लाह ताला ने उसको दे करके पैदा किया होता है वो उस फितरत के जरिए से अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहा होता है, हत्ता के जब उसकी मौत आती है ना, जानवर की मौत आती है तो उसको कोई बताता नहीं है कि तुमने क्या करना है। वो जानवर खुद जो है वो किसी ऐसी जगह पे जाता है या जाती है, या परिंदा है तो वो उड़ करके ऐसी जगह पे पहुंचता है कि जहां पे कोई उसको देख नहीं सकता, वहां पे जाकर के वो अपनी जान देता है। आपने कभी देखा अपने घर के बाहर, पाकिस्तान में रहते हैं तो कुत्ते होंगे आपके घर के बाहर बहुत सारे, राइट? सऊदी अरब में रहते हैं तो बहुत सारी बिल्लियां आपको नजर आएंगी सड़कों पर घूमती हुई, बे इंतहा परिंदे आपको जो है वो आसमान में उड़ते हुए नजर आएंगे। क्या आपने देखा कि कोई परिंदा जो है वो मरा पड़ा हुआ हो? तो कोई परिंदा नहीं, ये जो हजारों परिंदे आपको नजर आते हैं, कहीं कोई परिंदा देखा मरा मरा हुआ, सिवाय इसके कि किसी ने उसको गोली से मार दिया हो या किसी बिल्ली को जो है वो किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी हो। ये सारी बिल्लियां जब मरती हैं तो किधर जाती हैं, या ये मरती नहीं है, या मरती हैं तो किधर जाती हैं? कोई ऐसी जगह तलाश करें कि जहां पर कोई जो है वो नहीं पहुंच सके, वहां पे आपको बिल्लियां मरी हुई नजर आएंगी। हमारे बिल्डिंग में जब मैंने ये बात पढ़ी ना, हमें खुद भी कभी सोचा नहीं था इस तरह से, जब मैंने ये बात कहीं पे पढ़ी तो हमारी बिल्डिंग में एक जगह है जो कि घरों के बीच में जिस तरह से एक शूट की जगह होती है, वहां पे कोई भी नहीं जाता और ना कोई जो है वो खिड़की खोल के उसके अंदर देखता है। हमने जाके छत से उस जगह पे झांका तो नीचे कितनी कबूतरें और फाख्ताएं जो कि यहाँ पर आम होती हैं उड़ती हुई, कितनी सारी वहां पे मड़ी नजर आई, वो सब वहां पे जाती हैं मौत के वक्त में और वहां पे जाके अपनी जान दे देती। उसी तरह से बिल्लियां तो पता भी नहीं कहाँ जाके अपनी जान देती। क्या मतलब कहने का, कि ये सब का सब अल्लाह ताला ने उनकी फितरत में डाला हुआ है, ना तो उनका बाप उनको सिखाता है, ना उनकी माँ उनको सिखाती है, ना कोई मदरसा सिखाता, ठीक है ना? या कोई एतराज है आपको इस बात के ऊपर? इंसान का बच्चा जब इस दुनिया में आता है, ठीक है, तो अब इंसान को कौन सिखाता है? क्या इंसान की फितरत में सब कुछ होता है कि अब उसको क्या करना है, कैसे खाना है, क्या कैसे पीना है, कैसे जो है वो अपनी जिंदगी गुजारनी है? नहीं, उसको कुछ भी नहीं आता। अल्लाह ताला ने उसकी फितरत में रोने के सिवा और कुछ भी चीज नहीं डाली होती, हर चीज उसको जो है वो उसकी माँ सिखा रही होती है, फिर उसका बाप सिखाता है, फिर उसके बाद जो है वो मदरसा सिखाता है, ठीक? लेकिन बच्चे को क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, अगर माँ ने खुद ये बात नहीं सीखी होती है, फिर वो कैसे सिखाएगी अपने बच्चों को ये सारी बात, ठीक है? तो अब बच्चे की परवरिश, बच्चे की नशोनुमा कैसे करनी है? जिस तरह से जानवर की नशोनुमा हो रही होती है, उसी तरह से इंसान के बच्चे की नशोनुमा हो रही होती है। खिलाया पिलाया और जो है वो कुछ मादी जरूरियात उसकी पूरी कर दी, बस खलास। और भाई ये तो जानवर भी जो है वो कर सकता है, इस तरह से जो है वो तालीम और तरबियत तो आप जानवर की करते हैं कि बस खिलाया पिलाया और बस उसकी नशोनुमा हो गई। इंसान को तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, इंसान को तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपना खलीफा बनाया है, राइट? इंसान ने तो इस दुनिया में आकर के अल्लाह का निजाम कायम करना है, उसके लिए उसको उसकी माँ को खुद कुछ पता नहीं होता, उसने खुद कुछ तालीम हासिल नहीं करी होती, ना उसको सिखाया जाता है, ना उसको कराया जाता है, ठीक है? तो भाई फिर इस तरह से तो फिर इंसान के बच्चे उसी तरह पल के जवान हो रहे होते हैं ना, जिस तरह से जानवर का बच्चा पल के जवान हो रहा होता है। ज्यादा से ज्यादा उसको किस चीज का इल्म दिया जा रहा होता है, कमाने का इल्म दिया जा रहा होता है, कि तुमने कमाना कैसे है और तुमने खाना कैसे है, जो कि स्कूलों कॉलेजों के अंदर तो ये तालीम दी जा रही होती है, कमाने और खाने की तालीम। तो ये जो जानवरों की तरह इंसानों के बच्चे पल करके जवान हो चुके, जिन्होंने दुनिया का निजाम अब अपने हाथों में लिया हुआ है, तो फिर तो ये दुनिया जानवरों से भरी हुई दुनिया कहलाएगी ना। इंसानों से भरी हुई दुनिया तो नहीं कहलाएगी ना। अब इस जानवर नुमा इंसानों से आप क्या तवक्को करते हैं कि ये जो है वो इंसाफ का बोलबाला करेंगे, ये मजलूमों को जो है वो साथ देंगे, ये दुनिया के अंदर जो है वो खैर का इंतजाम करेंगे, किसी के ऊपर कोई जो है वो जुल्म कर रहा होगा तो उसके जाकर के जो है वो जुल्म का बदला लेंगे उससे। भाई ये तो खुद जानवर हैं, ये तो खुद जानवर हैं, ये तो खुद वहशी जानवर हैं। वहशी कहते हैं जंगली, जंगली को, तो खुद जंगली जानवर है क्योंकि उनकी परवरिश, इनकी नशोनुमा जंगली जानवर की तरह ही हुई है। ठीक है, तो कहने का पूरी की पूरी तकरीर का मकसद यह है कि भाई औरत जो है ना उसको जिस इल्म की जरूरत है वो इल्म देना, ये उसके साथ खैरख्वाही है, ये उसके साथ जो है वो भलाई है, ना कि उसको वो इल्म देना जो कि उसकी जरूरत नहीं थी बल्कि किसी और की जरूरत थी, मर्द की जरूरत थी या किसी और की जरूरत थी, उसको आपने वो वाला इल्म देना शुरू कर दिया। घर को कैसे चलाना है उसका इल्म नहीं दिया, औलाद को कैसे बढ़ाना है उसका इल्म नहीं दिया, कैसे इंसान बनाना है उसका इल्म नहीं दिया आप। ये जुल्म है औरत के ऊपर, ये बर्बरियत है और ये औरत के साथ, और इसका हमें एहसास ही नहीं। अल्लाह ताला से हमें तौबा करनी चाहिए कि अब तक जो हमसे इस मामले में कोताही हो गई है, अल्लाह ताला हमें भी माफ कर दे, हमारे मर्दों को भी माफ कर दे, हमारे अब्बाओं को माफ कर दे जिनसे हमें बड़ी मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनसे जो ये कोताही हो गई है अल्लाह ताला उनको माफ फरमा दीजिए, हम उनके लिए इजहाले सवाब करेंगे अगर वो दुनिया से चले गए। ठीक है, और फिर हमें तौफीक अता फरमा दीजिए कि हम इस रविश को तब्दील करने में अपना हिस्सा अदा करने वाले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बात की समझ और उनकी तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआ अना अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।